نحمد و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم عزیز بھائیوں اور بہنوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم 13ویں پارے کے مضامین کا جائزہ لیں گے اور 13ویں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے تو سورہ یوسف جو ہے وہ جاری ہے نصف اس کا تقریباً پچھلے پارے کے اندر 12ویں پارے کے اندر اور پھر اس کا باقی حصہ یہاں پہ اس 13ویں پارے کے اندر ہے اور جیسے اس کے بارے میں ہم نے کل اس کا تعارف پڑھا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو ایک بہترین قصہ اصل القصص قرار دیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قصے کے اندر اس سورت کے اندر اور اس قصے کے اندر دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے اور توحید بھی ہے اور سیرت اور سوانح کا ذکر بھی ہے سیاست بھی ہے اور حکومت کے رموز بھی ہیں انسانی نفسیات کا ذکر بھی ہے اور پھر چوپائیں اور پرندوں کا بیان بھی ہے معاشی خوشحالی کی تدبیر بھی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ہے اور پھر تاجروں اور عالموں اور جاہلوں کے حالات بھی اسی کے اندر ہیں زہد و تقوی کی دستگیری بھی ہے اور انبیاء اور صالحین کا تذکرہ بھی اسی کے اندر موجود ہے راہ راست سے ہٹ جانے والی جو عورتوں کی ہیلے سازی بھی ہے اور ان کی پھر مکاری اور حیا باختگی بھی اسی کے اندر پائی جاتی ہے اس قصے میں شہرت بھی ہے اور گمنامی بھی ہے عزت بھی ہے اور شہرت بھی ہے اور ثروت بھی ہے اور دولت بھی ہے اور ذلت بھی ہے اور عزت بھی ہے اور اسی کے اندر صبر و ثبات بھی ہے اور بندگی شہوت بھی ہے یوں اس طریقے سے اس کے مندرجات نے یہ جو اس کے اندر موجود ہیں اس کے اندر جو عبرتیں موجود ہیں اور اس کے اندر جو نصیحتیں موجود ہیں ان تمام نے مل کر اس قصے کو ایک بہترین قصہ بنا دیا ہے آپ اور آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے جو اس کے اندر دلجوئی کا بہت سارا سامان موجود تھا اور آپ کے لیے اور آپ کے ساتھیوں کے لیے ایک سبق اس کے اندر موجود تھا کہ جن نامساعد حالات سے تم لوگ گزر رہے ہو اب ان سے بالکل نہ گھبراؤ اور دل شکستہ نہ ہو اللہ تعالیٰ قادر المطلق ہے وہ حالات کو جس طرح چاہے وہ پھیر سکتا ہے وہ تمہارے دشمنوں کی تمام مخالفانہ تدابیر کو تمہارے حق میں خیر و برکت اور کامیابی کا ذریعہ بنا دے گا تو اس قصے کے اندر اس طریقے سے بہت ساری باتیں جو ہے وہ بتائی گئی ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ اس کے اس کو اس کے پیرا بہ پیرا جو اس کے مضامین کو لے کر چلیں کیونکہ زیادہ تر قصے پہ مشتمل ہے اور قصہ ہم یہاں پہ نہیں بیان کرنے لگے کیونکہ ہم کو بچپن ہی سے اور اس قصے کے مختلف جو ہے وہ معلوم ہے ہمیں یہ قصہ اور پھر ہم سنتے بھی رہتے ہیں اور قرآن پاک کے ترجمے اور تفاسیر کے اندر ہم سنتے بھی رہتے ہیں تو ہم چلتے ہیں اس قصے کے اہم اسباق کی طرف کہ اس میں قصے کے کیا اہم اسباق موجود ہیں ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ایک بہترین سبا کا آغموز قصہ ہے تو اس کے اندر اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے رموز اور اسباق اس کے اندر موجود ہیں ان میں سے چند ایک کا جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے رموز جو ہے ایسے ہیں جو اس قصے سے ہمیں جہاں رہنمائی مل سکتی ہے یہ قصہ آگے چل کر جہاں جہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر آیا ہے تو وہ چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے کی شکل اختیار کر لیتا ہے گویا آپ جہاں پہ یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے تو آپ وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ جو ہے رکھ سکتے ہیں اور پھر برادران یوسف کے اندر پھر اہل مکہ کی نفسیات کی عکاسی کی گئی ہے اور یعنی وہ ایک بالکل جو اس طریقے سے جو ہے وہ کہا کسی کو گیا ہے اور سنایا کسی کو گیا ہے اور اس طریقے سے یہ جو اسلوب ہے قرآن کے تمام قصوں کا موجود ہے کہ ایک تمثیل اور ایک قصہ ماضی کا بیان کر کے موجودہ حالات کے اوپر منطبق کر دیا جاتا ہے اور لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم اب سبق سیکھ لو کہ دیکھو پہلے بھی اس طرح ماضی میں تاریخ میں ایسا ہو چکا ہے اور بالکل اسی طرح کے کردار ماضی کے اندر بھی موجود تھے اور اس ماضی کے قصے کے اندر یہ اس کا انجام ہوا ہے اب تم خود جو ہے وہ دیکھ لو کہ تم اس واقعے کے اندر اس قصے کے اندر تمہارا کون سا کردار ہے اس میں ایک بات ہمیں اور ملتی ہے کہ مصیبت کے وقت یا کوئی جو مصیبت آتی ہے تو وہ نعمت اور راحت تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتی ہے لیکن اس کے لیے شرط رکھی گئی ہے کہ صبر اور اللہ پہ بھروسہ جو ہے وہ شرط کرا دی گئی اگر یہ ہو تو پھر مصیبت جو ہے وہ جو ایک رحمت جو ہے وہ بن سکتی ہے اور راحت جو ہے وہ بن سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے اندر اس میں سے جو خیر و برکت اس کے اندر پوشیدہ ہے वो बरामद हो सकता है इंसान अगर अल्लाह ताला पे भरोसा करे और फिर सब्र करे। और जैसे मैं पहले कहता चला आ रहा हूं कि ये सब्र देखें कि ऐसी शाह कुलीद है कि हर जगह पे हर मुश्किल हालात के अंदर जहां जहां पे इस सब्र पे अमल होगा तो वो सारे के सारी मुश्किलात जो है वो आसान होती चले जाएंगी। फिर एक और जो इसका सबक है वो ये है कि अच्छे अखलाक और आला औसाफ और बेहतरीन तरबियत जैसी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो है कि आप जब अपने घर से निकले तो एक बिल्कुल नौजवानी की उम्र के अंदर अर्ली आप कह लें कि अभी अभी 20 साल के भी अब नहीं हुए थे और इससे भी 20 साल से पहले की उम्र में 17-18 साल की उम्र के अंदर आपको जो है वो भाइयों ने कुएं के अंदर फेंक दिया था, लेकिन आपकी उस नए उस मकाम तक पहुंचते पहुंचते एक अच्छे अखलाक और किरदार जो है वो डेवलप हो चुका था। तो ये अच्छा अखलाक और किरदार जो है ये बाहर अपना रंग जो है वो रंग दिखा के रहता है अपना, और आप जो अलैहिस्सलाम इंतहाई नामसाद हालात में भी पूरी पामर्दी के साथ जो है वो आप साबित कदम रहे, और आपका रवैया देखेंगे किस मतानत का रवैया है कि आप चाहे जो है वो जिस वक्त आप कुएं से आपको निकाल के आपको मिस्र के बाजारों के अंदर बेचा गया, आपको बेचा जा रहा था, तो ना आपने जो फरियाद की और लोगों को बताया कि देखो लोगो मैं एक नबी का बेटा हूं और मैं जो है ये हूं और मैं ये हूं और मेरे बाप को पता चला तो मेरे बाप जो ऐसा और ऐसा कर देगा, बड़ी इंतहाई संजीदा और मतानत का मुजाहरा जो है वो किया आपने, और जो है ये आपकी तरबियत का और बड़े सब्र का मुजाहरा किया, और अल्लाह ताला पे भरोसा था कि ये मुश्किल हालात के अंदर जिसमें से वो गुजर रहे हैं एक दिन वो अल्लाह ताला आपको इन मुश्किल हालात में से जो है वो निकाल लेगा। फिर इसके बाद जो है एक और सबक इसका ये है कि इफ्फत व अमानत, यानी ये पाकीजगी जो किरदार की पाकीजगी है और अमानत जो है और फिर मुश्किल हालात के अंदर इस्तेकामत पे कायम रहना, यानी अपने जो है ये जो मुश्किल हालात हैं उनका बिल्कुल सामने डट के उनका जो है मुकाबला करना और सब्र करना उस पर, ये तमाम भलाइयों का सरचश्मा है। तो मर्दों के लिए भी ऐसा ही है और औरतों के लिए भी जो है वो ऐसा ही है, और दीन पे साबित कदम रहने वालों के लिए ये एक सबक है कि अगर वो दीन पे साबित कदम रहें तो बिल आखिर मुश्किल हालात के बावजूद इज्जत और एहतराम उनको हासिल होके रहता है। फिर एक बात सामने से आती है कि मर्दों और औरतों का आजादाना इख्तलात अगर जो जहां जहां भी होगा इख्तलाना इख्तलात की आजादाना इख्तलात की महफिलें मुनक्किद होंगी मर्दों और औरतों की तो वो बहरहाल फितने का बायस होंगी, जैसे इस वाकये के अंदर भी जो है वो सामने आता है। फिर इसके बाद ये हजरत यूसुफ सलाम के किरदार से एक हमें रहनुमाई मुयसर होती है कि जो सच्चा दाई है वो दाई का मतलब दावत देने वाला वो हमा वक्ती दाई होता है, वो मुश्किल हालात हों जमानो मकान के तगयुर के बावजूद कोई एक जगह हो या दूसरी जगह हो या जो है जैसे भी हालात हों वो दावत के फरीजे से कभी गाफिल नहीं होता जिस हालत में भी होगा। अब देखेंगे इससे मुश्किल हालात क्या हो सकते हैं कि इंसान को जेल की कोठड़ी के अंदर जो है वो डाल दिया जाए, और फिर लेकिन वहां पे भी आप देखें कि अपॉर्चुनिटी है, आपने जो है वहां पे भी जो है वो आपने जो दावत का फरीजा जो है वो नहीं छोड़ा बिल्कुल, आप लोगों को दावत आपके जो जेल के इर्द गिर्द लोग मौजूद थे आप उनको दावत के जो है वो देते रहे और अल्लाह ताला की वहदानियत के बताते रहे जो वो इसे जो है वो आगाह नहीं थे, और आप इस फरीजे से कभी गाफिल नहीं हुए। इस तरीके से दाई को हर वक्त हमा वक्त और हर लिहाज से हर जगह पे जो है वो दावत का काम जो है वो करना चाहिए। और फिर ये भी है कि दाई को हर मुसलमान को बुनियादी तौर पर लेकिन खास तौर पर जो अल्लाह ताला के रास्ते की तरफ दावत देने वाले हैं लोग हैं उनको अपने दामन की सफाई का बड़ा खसूसी ख्याल रखना चाहिए, अपनी क्रेडिबिलिटी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, और आप जो है क्योंकि आपकी जो आपके साथ वाबस्ता आप जिस चीज की दावत दे रहे हैं जो तबलीग की जो कर रहे हैं वो जो है उससे आपकी आपके दामन से और आपके करेक्टर से वो जो है वो लिंक्ड है आप, और कोई भी ऐसी चीज जो आपके दामन पे कोई दाग होगा तो इससे हर्फ आएगा आपकी दावत के ऊपर। तो आप अगर आप देखें तो आप अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल से बाहर आने से इनकार कर दिया, आपको जब 8 साल की जब जेल जब पूरे उनको एहसास हो गया कि नहीं आपको तो गलत तरीके से जेल के अंदर डाल दिया गया था तो आपने फिर इसको जो है वो इनकार आप उन्होंने कहा कि नहीं आपको रिहा करते हैं, तो आपने कहा कि इनकार कर दिया कि नहीं जब तक मेरी बेगुनाही का ऐलान नहीं किया जाएगा तब तक मैं जेल से बाहर नहीं आऊंगा, आप अलाल लान ये कहिए कि नहीं, मुझे बेगुनाह जेल के अंदर डाला गया और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, और मेरे किरदार के ऊपर लगा हुआ ये जो धब्बा है जो तुमने लगाने की कोशिश की है, इसको आप खुद अपनी जबान से ऐलान करके धोएं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, ये तो दरअसल जो है मकर था वो अजीज मिस्र और दूसरी औरतों का, जो उन्होंने जो है जिसके जरिए से आपको जो है जेल के अंदर जो है डलवाया, और खास तौर पर इस अजीज मिस्र की जो बीवी थी उसने आपको जो है जेल के अंदर भिजवाया। और फिर ये भी है कि अल्लाह ताला जब किसी को तकलीफ में मुबतला करने का इरादा करता है तो फिर उसकी तकदीर और फैसले में उसको कोई नहीं टाल सकता। और इसी तरह उसके साथ अगर अल्लाह ताला किसी के साथ इज्जत का मामला और तौकीर का मामला करना चाहे तो फिर अल्लाह ताला को कोई रोक भी नहीं सकता। इस बात पे बिल्कुल इंसान का पुख्ता यकीन होना चाहिए। अल्लाह ताला ने ये इस बात को इस तरह इरशाद फरमाया कि वल्लाहु ग़ालिबुन अला अम्री, अल्लाह ताला अपने 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 अम्र के ऊपर जो है वो पूरी तरह ग़ालिब है। वलाकिन अक्सर नास ला यालमून, लेकिन बहुत सारे लोग जो है इस बात को जानते नहीं है। यानी बाज़ औक़ात इंसान जो है जानता भी होता है, लेकिन इंसान जो है ये अंदर दिल के कल्ब के अंदर पैवस्त नहीं होती है बात, और उसको यकीन और ईकान की कैफियत और कन्विक्शन की जो है सूरत हाल नहीं होती। इस वजह से फिर वो मुख्तलिफ किस्म का जो है वो रवैयों का इजहार करता है। फिर एक बात एक इससे सामने आती है कि सब्र से हर मुसीबत और परेशानी का कामयाबी के साथ जो मुकाबला किया जा सकता है। फिर ये भी कि कौम हो या फर्द, दोनों को दोनों के लिए तवील मुद्दती मनसूबाबंदी बहुत जरूरी है। अब और ये भी इसे जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो है वो कहत से पहले मनसूबाबंदी की, एक तवील मुद्दती मनसूबाबंदी की, और बड़ी कामयाबी के साथ कहत के जमाने से जो है आपने अपनी कौम को और उस पूरे मुल्क को जो है वो बचाया। तो इस तरीके से मनसूबाबंदी जो है वो तवक्कुल अल्लाह के खिलाफ भी नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं भाई ये क्यों जमा कर रहे हो, क्या तुम्हें कल के लिए आने वाले कल के लिए अल्लाह ताला की यकीन नहीं है? यकीन है जरूरी तौर पर, लेकिन अल्लाह ये भी अल्लाह ताला ने जो है इस बात की भी इजाजत दी है और इस बात की रहनुमाई फरमाई है कि अपने लिए और अपनी कौम के लिए और इज्तमाईत आपकी जो मुसलमानों की है उसके लिए जो है मनसूबाबंदी करके चीजों को इंतजाम करना ये तवक्कुल अल्लाह के खिलाफ नहीं है। ये भी फिर यह कि अल्लाह से कभी किसी हाल में मायूस न होना चाहिए। हालात कितने ही दिगर दूं क्यों ना हो, इंसान बहुत ही यानी इससे ज्यादा क्या मायूसी और मायूसकुन हालात का सामना हो सकता है कि जब अल्लाह के नबी का एक बेटा और खुद अल्लाह का एक नबी जो है वो गुलामों की तरह बिक कर जो है मिस्र के बाजारों के अंदर उसकी बोली लगाई जा रही है, और इससे ज्यादा क्या मायूस। या फिर वो इससे भी ज्यादा मायूस तर हालात वो थे जब वो दूर दराज के जंगल के एक बिल्कुल अंधे कुएं के अंदर जो है वो कुएं की अंधेरी तारीकी के अंदर जो है वो पड़ा था, और इस बात का इम्कान भी नहीं लगता था कि जंगल के इस बयाबान में और इस बयाबान के इस कुएं के इस अंधेरे के अंदर किसी तरीके से निकलने की कोई सूरत हो सकती है। लेकिन देख रहे हैं अल्लाह ताला की जो है वो किस तरह अल्लाह ताला अपने अमर पे गालिब है कि वहां से निकाल कर अल्लाह ताला ने मिस्र के तख्त के ऊपर आपको जो है ला बिठाया। गलतियों पर जिंदगी को रोक नहीं देना चाहिए, यह भी इसका एक सबक है, बल्कि मुस्बित तौर पर आगे बढ़ना, चाहे गलती अपनी हो या फिर गलती दूसरों की हो। अगर दूसरों की गलती भी है तो फिर माफ करके और भूल कर उसको आगे बढ़ना जो है ये बहुत आगे बढ़ने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। कि जो है फॉरगिव एंड फॉरगेट वाली बात करें कि आप भूल जाएं और फिर आगे बढ़ें, इस तरीके से जो है आप बहुत दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर इंसान स्टक हो गया है और एक जगह रुक गया है कि फलां ने मुझे साथ ये अमल किया, मैं जब तक उसका बदला लेके रहूंगा मैं जो है दुनिया के काम बाकी नहीं करूंगा, मुझ पर हराम है, तो जाहिर है आप देख सकते हैं कि वो फिर दुनिया में कहां कौन सा ऐसा कोई मुस्बित काम है जो वो कर सकता है या आगे बढ़ सकता है। फिर यह भी कि दुनिया में किसी भी रुतबे पर आप पहुंच जाए, अल्लाह ताला आपको बहुत आला तरीन मरातब दुनियावी लिहाज से अता कर दे, लेकिन आजजी और फरोतनी और ह्यूमिलिटी जो है इसको ना छोड़ना चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम की देखें मिस्र के तख्त के ऊपर जब बैठे हैं और आपके आपके पास ये सब जो चीज आ गई है, तो इज्ज का नमूना देखें, जो दुआ उन्होंने की है वो इज्ज की सरासर इज्ज और आजी की दुआ है और अपने इंतहा ह्यूमिलिटी का इजहार है। वो जब कहते हैं कि रब्बे कद आतैतनी मिनल मुल्क व अल्लमतनी मिन तावीलिल अहदीस अंत वलीजी फिद दुनिया वल आखिरा तवफ्फनी मुस्लिमन व अलहिकनी बिस्सालिहीन, अल्लाह तूने मुझे, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ये जो है ये तख्त दिया है और मिस्र की बादशाही दी है, और मुझे तूने जो है ये बातों की तावील यानी ख्वाबों की तावील सिखाई है, और फिर फरमाया कि तू ही दुनिया और आखिरत में जो है हमारा वली है, और फरमाया कि तवफ्फनी, मुझे मुझे वफा दे मुसलमान, एक मुसलमान की हैसियत से मुझे वफा दे, वह अलहिकनी बिस्सालहीन, और मुझे सालहीन में से मेरा शुमार, मैं नहीं कि मैं बड़ा साले हूं और मैं नबी हूं और मैं ये हूं और मैं वो, नहीं, फरमाया कि मेरा शुमार सालहीन के अंदर फरमा दे। यानी ये जो ह्यूमिलिटी की और ये आजजी की जो है, ये जिसका का एक नमूना है जो आपके किरदार से बिल्कुल सामने आता है। सूरत का आखिर फिर है, इबरत की दावत दी गई है कि जो खुदा यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल कर फिर तख्त पे बिठा सकता है, वो इस बात पर भी कादिर है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज्जत दे, और वो आपका जो दीन है वो तमाम अदियान के ऊपर सब उस पे गालिब कर दे। ये बईद नहीं है, बेशक हालात कितनी जगदू क्यों ना हो। इसके बाद फिर सूरह राद है, राद का मतलब है बादल की जो गरज होती है यानी थंडर, और ये मक्की सूरत है, ये भी 12 हिजरी में सूरह यूसुफ के बाद नाजिल हुई है। ये जब वो जमाना था आपके खिलाफ चले चालें चली जा रही थी और मक्र आपके खिलाफ जो है उरूज पे था, तो ये सूरत बड़ी बड़ी मुनफरिद है, अपने इसके मखसूस अल्फाज हैं, और ये जहाँ पे जिन अल्फाज के ऊपर आयात का अख्तिताम होता है, काफिये जैसे कहा जाता है जिन्हें, या कुरान की अपनी इस्तलाह के अंदर इन्हें जो फवासिल कहा जाता है, वो बड़े मुनफरिद हैं। और इख्तिसार, ये जो इजाज है, ये ब्रेविटी है, ये सूरत का बड़ा जो है एक खूबसूरती है। और फिर इसके अंदर आफाक पूरी यूनिवर्स से और अनफुस अपने नफ्स से और अपने इंसान के अपने जिस्म से जो है वो बड़े मुहकम दलायल इसमें दिए गए हैं, बलागत के एतबार से और जामियत के एतबार से और उसलूब के एतबार से बड़ी ही पुरतासीर सूरत है ये। इसका मरकजी मजमून जो है वो रिसालत की दावत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत है। लेकिन इसके साथ साथ यकीनी तौर पर मक्की सूरत है, तौहीद और आखिरत की दावत भी जो है वो दी गई है, अल्लाह ताला की वहदानियत, उसकी अजमत और किबरियाई, उसके कुदरत कामला और हिकमत बालगा की जो दावत है वो, उसकी तरफ रहनुमाई मुख्तलिफ कायनाती निशानियों से जो है वो की गई है। इन कायनाती निशानी की मदद से अल्लाह ताला की वहदानियत को और अल्लाह ताला की तौहीद को जो है वो उसका इस्बात किया गया है। इस सूरत में किसी गुज़श्ता अकवाम में से किसी का जिक्र नहीं है, लिहाजा ये सूरत जो है जितनी की जितनी है, ये सारी आफाक के अंदर और अनफुस के अंदर जितने दलायल हैं, तो ये जो है उस उनका इसका जो उसके अंदर जिक्र है। अल्लाह ताला की वहदानियत के दलायल में से जमीन का जिक्र है, सूरज का और चांद सितारों का और दिन रात का और पहाड़ और समुंदर का और जमीन बतौर फर्श होने का और वो उबलते चश्मों का और बर्फोश चोटियों का और रंगीन वादियों का और फिर लहलहाते खेतों का और बागात का और अशजार और समर का और फिर जिंदगी और मौत का जिक्र है, कि ये सब के सब अकेले एक अकेले अल्लाह ताला के हाथ में हैं। तो फिर जब इन तमाम चीजों का, कायनात की हर चीज का मालिक भी वही है और मुंतजिम भी वही है, तो फिर इबादत किसी और की क्यों? फिर तौहीद को कि एक दूसरे रंग के अंदर भी पेश किया गया है कि ये जो रात यानी जो बिजली जो कड़क है, इसकी संगीन आवाज और फिर बिजली की जो कड़क है, ये भी इस पे आप जरा गौर कर दें। और फिर सवाल किया गया है कि इंसान अपने ही हाथों बनाए हुए बुतों के आगे सजदा रेज होता है, इस पे गौर फिक्र की दावत दी गई कि ये जिनको इंसान खुद ही अपने हाथों से तराशता है, भला वो जो है वो कैसे बराबर हो सकते हैं उस खुदा के जिसने इस पूरी कायनात को और उसके अंदर हर चीज को पैदा किया है, और हक व बातिल में तमीज की जो है ये मिसालें इस तरीके से जो है दी गई हैं। और फिर इसी तरह की जिंदा और महसूस और बहुत ही काबिले इदराक मिसालें जो है वो बयान की गई हैं, जिसको इररिफ्यूटेबल है, और इंसान जरा सा भी और गौर और फिक्र करे और इंसान के अंदर जो है इस हिस कोई हिस्सी जो है ये जो हिस इंसानी की जो वो मर ना गई हूं और बिल्कुल खत्म ना हो गई हूं, तो बिल्कुल इंसान इन पे जरा सा गौर करके अल्लाह ताला और उसकी वहदानियत को जो है वो महसूस कर सकता है। तौहीद और मुआद की तौहीद के साथ साथ मुआद यानी जो जो वापस दोबारा अल्लाह ताला की तरफ पलटने की जो दावत है, वो उसकी भी दावत दी गई, उसके जो अकीदा है उसकी दावत दी गई इस अकीदे की, और इसके लिए फिर आफाक और अनफुस से मिसालें दी गई हैं। और जब ये मिसालें दी गई हैं तो असल में ये जैसे ये सारी मिसालें अभी ऊपर भी आई हैं, तो ये सारी आफाक और अनफुस से मिसालें हैं। तो फिर इनसे इनका मकसद भी जो दरअसल क्या है कि ये भी जब इंसान तौहीद को अख्तियार कर लेता है, तो तौहीद को अख्तियार करने के बाद भी फिर असल में दावत तो उस बड़े इस्लाही और अमली प्रोग्राम की तरफ है कि ये मक्की दौर है, और मक्की दौर में ये प्रोग्राम जो है ये जनरल गुड है। जाहिर है वहां पे अभी शरीयत और उसके जो शरीयत के दीगर अहकामात है वो ऐसा सच नाफिज नहीं है, लेकिन इंसान को तैयार किया जा रहा है। और उसमें बहुत सारी चीजों का जिक्र किया गया है, जिसमें ईफा अहद है, सुलह रहमी है, सब्र इस्तेकामत है, इन्फाक वगैरह, तो इनका जिक्र किया गया है कि ये असल में ये जो चीजें हैं ये वो हैं अहले तकवा के 8 औसाफ हैं जो बयान किए गए हैं कि जब ये लोग तौहीद को जो पा लेते हैं, तो फिर तौहीद के बाद और अल्लाह ताला के इतराफ कर लेते हैं, तो फिर ये वो लोग हैं जो अल्लाह ताला के अहद को पूरा करते हैं, सिला रहमी करते हैं, अपने रिश्तों को जो है वो तोड़ते नहीं है, कतअ नहीं करते जिनको अल्लाह ताला ने जोड़ने का हुक्म दिया है, अल्लाह ताला का तकवा अख्तियार करते हैं, ये अल्लाह ताला के सामने हिसाब से और एहतसाब से जो है वो डरते रहते हैं कि हमने अल्लाह ताला के सामने पेश होकर अपने अमाल का जो है जवाब देना है, सब्र करते हैं, नमाज कायम करते हैं, और इन्फाक करते हैं, और फिर बुराई के जवाब भलाई से देते हैं। ये वो चीजें हैं, ये जनरल गुड है जो वहां पे मक्का में बताया गया है कि ये अल्लाह ताला के तौहीद को अख्तियार करने के बाद ये वो लोग हैं जो ये चीजें जो है अपनाते हैं। फिर ये भी बताया गया कि ये दुनिया की नापायदार जिंदगी में सुकून बड़ा एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल मुहाल है, ऐसा दुनिया का अल्लाह ताला ने इसका जो इसको बनाया इस तरह है कि इसके अंदर बहुत आसानी से ये सुकून चीज नहीं मिलती है। आप देख लें कि इंसानों की तमाम तर तरक्की के बावजूद इंसान इंतहाई मुस्तरिब और बेचैन है, और ये जो है जनरली एक्सेप्टेड है, ये बात बिल्कुल तस्लीम शुदा है कि इंसान को जो है सुकून नहीं मिलता। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे उस सुकून को हासिल करने की एक तरकीब बताई है, और मैं कि अल्लाह ताला ये सुकून जो है अल्लाह ताला पर ईमान और उसकी जिक्र के बगैर मुमकिन नहीं होगा, यानी अल्लाह ताला पे ईमान और उसके शऊरी जिक्र से अल्लाह ताला जो है ये इत्मीनान कल्ब अता फरमाता है, और सुकून की दौलत जो अल्लाह ताला जो है अता फरमाता है। इसी तरह जिस तरह तकवा और अहले तकवा और अहले ईमान की खसूसियात बनाई गई है, इसी तरह बदबख्त लोग अशकिया जिनको शकी जो लोग हैं, शकी ये कौफ वाला शक है, शकी लोग हैं बदबख्त जिसके मानी होता है, उनकी अलामतें भी बताई हैं कि ये अहद शिकनी करते हैं, जबकि अहले तकवा का जो है ये वस था कि वो अहद को पूरा करने वाले हैं, उनका ये था कि वो उससे सिला रहमी करने वाले हैं, और ये बदबख्त लोगों की अलामतों में से है कि ये कतअ रहमी करने वाले हैं, ये उन रिश्तों को काटते हैं जिनको जोड़ने का हुक्म दिया गया। फिर फरमाया कि ये जमीन में फसाद फैलाते हैं, इसी मौजों का मुतालबा करते हैं, हम तम ईमान लेके आएंगे कि ये और ये और ये मौजे जो है अगर हमारे सामने पूरे कर दिए जाएं तो हम ईमान लाएंगे, हालांकि अल्लाह ताला ने जिन निशानियों की तरफ रहनुमाई फरमाई है उस पर गौर नहीं करते, ये अल्लाह को भुला बैठे हैं, अल्लाह को भूल गए हैं, तो फिर अल्लाह ताला ने इनको अपने तई आप भुला दिया है, और जब अल्लाह ताला इनको अपने आप भुला दिया है तो फिर ये बिल्कुल ऐसी हैं जैसे छुपाए छुपाए हैं। फिर ये दुनिया की जिंदगी के अंदर मगन हैं, ये माल मास्त हैं और हाल मास्त हैं, और ये बिल्कुल जो है वो अल्लाह और अल्लाह की मखलूक से बिल्कुल जो है वो बेगाना है। तो ये इन लोगों की जो है इसके बरक्स अहले तकवा के बरक्स उनकी जो है कुछ अलामतें बताई गई। एक तमसील बयान की गई है कि कुरान का फैजान जो है ये बिल्कुल आम है बारिश की तरह, तो जब बारिश होती है तो हर एक के ऊपर बरसती है, लेकिन उसमें से कौन कितना हिस्सा पाएगा ये उसके जर्फ के मुताबिक, जितना कोई वो जरूफ लेके आएगा और जितना किसी का जर्फ होगा उसके मुताबिक उसमें से हिस्सा पाएगा। और फरमाया कि ये झाग जो होता है ये उड़ जाता है, पानी के ऊपर का झाग जो होता है, और फिर मादनियात जो होती हैं वो पानी में हल होकर जमीन को जरखेज बनाती हैं। शिर्क की मिसाल बातिल की सी है, और बातिल है ये शिर्क जो है झाग की तरह है उड़ जाएगा, और तौहीद जो है वो नफा बख्श दावत है, ये इंसानी दिलों में जड़ पकड़ लेगी और वहीं से अपने शजरों बार इसके बरगो बार जो है वो फूटेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखालफतों और साजिशों اور انکار و تکذیب کے ماحول کے اندر دعوت اور تبلیغ دیے جانے کا اور جاری رکھنے کا حکم ہے کہ کسی صورت کے اندر بھی آپ اس کو مت چھوڑیں. اس کے بعد پارے کے آخر میں جو ہے وہ سورہ ابراہیم ہے, یہ بھی مکی سورت ہے, یہ بھی اسی عرصے میں 11 سے 13 نبوی کے درمیان میں جو ہے وہ اتری ہے, ریویل ہوئی ہے. یہ وہ وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ کو شہر سے نکالنے کی منصوبہ بندی ہو رہی تھی کہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کو اس شہر سے نکال دیا جائے. پھر کفار مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تمہارا رویہ کفر کا اور ناشکری کا رویہ ہے, اور یہی وہ سورت کا بڑا تھیم ہے مینلی, کہ پچھلی قوموں کے انجام سے جو ہے وہ سبق سیکھو. جیسے پچھلی سورت کے اندر تو کسی پچھلی قوم کا ذکر نہیں کیا گیا, لیکن یہاں پہ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جو ہے تذکیر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حوالے سے تذکیر تھی, اور یہاں پہ تذکیر بے اجام اللہ, یہ اجام اللہ تعالیٰ کے دن اس کا ذکر آیا, اس کا لفظ کا جو اس کی لفظ کو اسی صورت کے اندر لایا گیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے دن سے مراد وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے قوموں کی تقدیر کا فیصلہ کیا ہے, جیسے جو ہے بدر کا دن تھا یوم الفرقان, جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے کفار کو بڑی زبردست شکست جو ہے بدر کے میدان میں, یا پھر جیسے یوم عاشور ہے جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بنی اسرائیل کو اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرعون اور اس کے تمام لشکروں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا, تو وہ دن بھی اسی طریقے سے ایام اللہ کہلاتا ہے. تو اس میں تذکیر ایام اللہ ہے, اللہ تعالیٰ کے دنوں کے حوالے سے تذکیر جو ہے موجود ہے اس کے اندر, اور جو ہے پچھلی قوموں کے انجام سے سبق حاصل کرنے کا کہا گیا ہے کفار کو, اور پھر فرمایا کہ یہ سبق حاصل کر کے توحید اختیار کرو اور شکر کا رویہ اختیار کرو. تو شکر کا رویہ جو ہے اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ کیا گیا ہے, اور اس میں بھی شکر اور کفر کو جو ہے وہ بالکل ساتھ بساتھ رکھ کر جو ہے کمپیئر کیا گیا ہے. قرآن کا تعارف جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو جس سے انذار حاصل کر کے لوگ جو ہے وہ سیدھا ہدایت کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں, کتاب انذار ہے. کفر و شکر کی کشمکش کی تاریخ بتائی گئی ہے, اور اس میں رسولوں کے کردار کی وضاحت کی گئی ہے کہ رسولوں نے ہمیشہ یہی دعوت دی ہے, توحید کی دعوت دی ہے اور شکر اختیار کرنے کی دعوت دی ہے اور ناشکری سے بچنے کی دعوت اختیار کی ہے, اور اس میں پھر قوم نوح کا ذکر ہے اور قوم عاد اور قوم ثمود کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے. کفر کرنے والے یہ سردار جو ہے یہاں پہ ظاہر ہے, یہ جو کفار مکہ ان کو اور ان کے پیروں کو خبردار کیا گیا ہے کہ یہ جو کفر کے رویے پر اور ناشکری کے جس رویے پر یہ گامزن ہے, ان کو اپنی فکر کرنی چاہیے, بہت جلد ان کا جو ہے حساب ہونے والا ہے. پھر کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیصہ کی مثال دی گئی ہے کہ توحید کا اقرار تو کلمہ طیبہ ہے, اور اس کی دعوت جو ہے انسان کے قلب میں پیوست ہو جاتی ہے, اور پھر پیوست ہو کے اس سے پھر اس کے برق و بار جو ہے وہ نکلتے ہیں, اور وہ دوسروں کو بھی یہ جو ہے شجر سایہ دار جو ہے وہ چھو میسر کرتا ہے, اور یہ پھیلتا چلا جاتا ہے. اور اللہ پھر جو ہے اور اس کے برعکس جو ہے فرمایا کہ یہ جو ناشکری ہے اور کفر ہے یہ کلمہ خبیصہ ہے, اس کا جو ہے وہ کلمہ خبیصہ اور اس کی جڑیں جو ہے بالکل اوپر ہوتی ہیں اور نیچے کسی جو ہے وہ چیز میں جو ہے وہ پیوست نہیں ہوتی. پھر اللہ تعالی لوگوں سے اس سورت کا جو مرکزی مضمون ہے اس کے حوالے سے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا جو ہے مطالبہ کیا گیا ہے, اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ سے شکر و توحید پر استدلال کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام خود اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ شکر توحید کے جو سراسر توحید پہ عمل کرنے والے اور توحید کی دعوت دینے والے, ان کی پوری زندگی توحید کی دعوت کے اوپر جو ہے ان کی گواہ ہے, اور کس طریقے سے یہ شکر کا ایک عملی جو ہے وہ اظہار ہے. اس طریقے سے سورہ ابراہیم کا جو ہے یہاں پہ اختتام ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سورہ اگلا پارہ شروع ہوتا ہے, اور اگلے پارے کے اندر پھر نئی سورت بھی شروع ہوتی ہے اور نیا پارہ بھی جو ہے وہ شروع ہوگا انشاءاللہ, اس کے مضامین 14 پارے کے हम कल उनका जायजा लेंगे। बारक अल्लाह ली व लकुम फिल कुरान अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिमा फ़ीही मिन आयाति व ज़िक्रिल हकीम फ़स्तग़फ़िरू इन्नहू ग़फ़ूरुर रहीम।